नमस्कार, आज का हमारा विषय है चैप्टर 11, द वॉइस ऑफ स्पीच।
हम सब मतलब अक्सर दूसरों की कही बातें दोहराते हैं, कभी उनके ही शब्दों में तो कभी अपने शब्दों में।
जी हाँ, तो आज इसी कला को या कहें कि ग्रामर के इस नियम को समझेंगे, यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच।
बिल्कुल, और ये सिर्फ आप देखें तो परीक्षा के लिए ही नहीं है, ये तो रोजमर्रा की बातचीत में, लिखने पढ़ने में, यहाँ तक कि खबरें समझने में भी बहुत काम की चीज है।
सही कहा।
तो आज हमारा मकसद है इस चैप्टर के जो जरूरी हिस्से हैं उन्हें आसानी से समझना, जैसे भाई डायरेक्ट स्पीच क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या है, और एक से दूसरे में बदलते वक्त किन बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे रिपोर्टिंग वर्ब्स, कनेक्टर्स, फिर टेंसेज में बदलाव, प्रोनाउंस में,
हाँ।
और हाँ वो सवाल पूछने वाले वाक्य माने इंटरोगेटिव, और हुक्म या सलाह वाले माने इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, उनका क्या करना है।
अच्छा, तो चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए मेरी एक दोस्त है मीरा, उसने कहा आई लव चॉकलेट्स। अब ये सुनने में एकदम सीधा है ना, जैसे मीरा ने खुद कहा हो।
हाँ बिल्कुल, यही है डायरेक्ट स्पीच, जो वक्ता ने कहा उसके शब्द बिना किसी बदलाव के, और आम तौर पर कोटेशन मार्क्स कोट्स के अंदर रखे जाते हैं,
जैसे कोई डायलॉग सुन रहे हो।
एकदम।
और अगर मैं यही बात किसी और को बताऊं तो शायद मैं ऐसे कहूंगा, मीरा सेड दैट शी लव्ड चॉकलेट्स। ये थोड़ा अलग हो गया।
और बस यही है इनडायरेक्ट स्पीच, या जिसे हम रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं।
हाँ, रिपोर्टेड स्पीच।
इसमें हम किसी की बात को अपने शब्दों में बयान करते हैं, तो वो कोटेशन मार्क्स हट जाते हैं,
हाँ,
और अक्सर वाक्यों में कुछ बदलाव करने पड़ते हैं, जैसे आपने देखा आई का शी हो गया और लव का लव्ड हो गया।
तो मतलब डायरेक्ट हुआ ज्यों का त्यों, और इनडायरेक्ट हुआ रिपोर्ट करना अपने अंदाज में। एक और उदाहरण ले, जैसे कोई बारबरा है, उसने कहा आई डिडंट रियलाइज इट वॉज मिडनाइट। ये हुआ डायरेक्ट।
जी,
और इसका इनडायरेक्ट बनेगा बारबरा सेड शी हैडंट रियलाइज्ड इट वॉज मिडनाइट।
अच्छा,
या फिर वही बात हुई, आई बन गया शी, और डिडंट रियलाइज जो कि पास्ट सिंपल है
हाँ,
वो बदल गया हैडंट रियलाइज्ड में, यानी पास्ट परफेक्ट में। ये बदलाव क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, यही आज हमें समझना है। ये दरअसल दिखाता है कि जब बात रिपोर्ट की जाती है ना, तो बोलने वाले का नजरिया मतलब पर्सपेक्टिव और कभी कभी समय भी बदल जाता है।
ठीक है ठीक है, तो ये बदलाव ये अपने आप तो नहीं होते होंगे, जाहिर है कुछ नियम होंगे इसके पीछे।
हाँ हाँ बिल्कुल, कुछ बुनियादी नियम हैं जो इस ट्रांसफॉर्मेशन को मतलब इस बदलाव को गाइड करते हैं। अगर ये नियम एक बार समझ आ जाए तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना काफी आसान हो जाता है।
पहला नियम तो शायद सबसे साफ है, वो कोटेशन मार्क्स हटा देने हैं। एकदम सही, वो तो इनडायरेक्ट स्पीच की पहचान ही है कि उसमें कोट्स नहीं होते। दूसरा, हमें एक रिपोर्टिंग वर्ब चाहिए होता है। ये वो शब्द है जो बताता है कि बात कही गई या पूछी गई या बताई गई या कुछ और, जैसे सेड, टोल्ड, आस्क्ड, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड वगैरह।
जैसे हमारे पिछले उदाहरणों में सेड था, मीरा सेड दैट, बारबरा सेड दैट।
बिल्कुल। तीसरा, और ये शायद सबसे अहम है, कि वाक्य के अंदर कुछ शब्दों को बदलना पड़ता है, खासकर टेंसेस, प्रोनाउंस जैसे आई, यू, माय, योर, और वो शब्द जो समय या जगह बताते हैं, जैसे टुडे, हियर, नाउ।
अच्छा,
ये बदलाव क्यों और कब होते हैं, इस पर हम अभी थोड़ी देर में विस्तार से बात करेंगे।
और चौथा नियम?
चौथा है कनेक्टर का इस्तेमाल। डायरेक्ट स्पीच के हिस्से को बाकी वाक्य से जोड़ने के लिए अक्सर दैट, इफ, वेदर या टू जैसे शब्दों की जरूरत पड़ती है।
कनेक्टर?
हाँ, और ये कनेक्टर वाक्य किस तरह का है उस पर निर्भर करता है।
अच्छा, ये रिपोर्टिंग वर्ब्स और कनेक्टर्स की बात थोड़ी और करते हैं, जैसे सेड और टोल्ड में क्या फर्क है, और ये कनेक्टर दैट कब लगता है?
देखिए, आमतौर पर जब कोई सामान्य बात कही जाती है मतलब स्टेटमेंट, तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड या टोल्ड इस्तेमाल होता है। सेड के बाद ऑब्जेक्ट यानी किसे कहा वो लगाना जरूरी नहीं है, जैसे शी सेड, लेकिन टोल्ड के बाद ऑब्जेक्ट लगाना जरूरी होता है, जैसे शी टोल्ड मी।
अच्छा, टोल्ड मी, टोल्ड हिम।
हाँ, और ऐसे सामान्य वाक्यों को जोड़ने के लिए कनेक्टर दैट का इस्तेमाल होता है, जैसे शी सेड दैट शी वॉज हैप्पी या He told me that he was going.
ठीक है।
हालांकि आजकल बोलचाल में अक्सर that को छोड़ भी दिया जाता है, लोग कह देते हैं she said she was happy.
हाँ, ये तो होता है। अच्छा, और अगर सवाल पूछा गया हो या कोई हुक्म दिया गया हो, तब रिपोर्टिंग वर्ब और कनेक्टर कैसे बदलते हैं?
हाँ, यहीं पर रिपोर्टिंग वर्ब का सही चुनाव बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर सवाल है तो रिपोर्टिंग वर्ब अक्सर asked या inquired होगा।
Asked.
हाँ,
और कनेक्टर इफ या वेदर हो सकता है, अगर यस नो वाला सवाल है.
अच्छा, यस नो क्वेश्चंस के लिए इफ या वेदर.
जी.
या फिर अगर सवाल पूछने वाला शब्द है जैसे वेयर, व्हाट, व्हाई, तो वो शब्द खुद ही कनेक्टर बन जाता है.
ओह, जैसे ही आस्क्ड इफ आई न्यू या शी आस्क्ड वेयर द कीज वर.
बिल्कुल.
और हुक्म के लिए, मतलब ऑर्डर या रिक्वेस्ट के लिए,
उसके लिए रिपोर्टिंग वर्ब वाक्य के भाव के हिसाब से चुनते हैं. ऑर्डर्ड, कमांडेड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, वॉन्ड, फॉरबेड वगैरह बहुत सारे हैं.
हाँ.
और कनेक्टर के तौर पर इन्फिनिटिव मार्कर टू का इस्तेमाल होता है.
अच्छा, टू.
हाँ, जैसे द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स टू बी क्वाइट या ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम. यहाँ दैट या इफ नहीं आता.
समझ गया. तो रिपोर्टिंग वर्ब का सही चुनाव बताता है कि बात किस अंदाज में कही गई थी. आते हैं टेंसेस, प्रोनाउंस और दूसरे शब्दों में बदलाव. ये टेंसेस में बदलाव वाला हिस्सा अक्सर लोगों को मुश्किल लगता है.
हाँ, ये थोड़ा ध्यान देने वाला है. पर इसका एक सीधा सा सिद्धांत है. टेंसेस में बदलाव मुख्य रूप से तब होता है जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, जैसे सेड, टोल्ड, आस्क्ड.
अच्छा, तो सारा खेल रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस का है. अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो जैसे सेज, या फ्यूचर में जैसे विल से,
तो डायरेक्ट स्पीच के अंदर के टेंस में आमतौर पर कोई बदलाव नहीं होता.
ये बहुत महत्वपूर्ण बात है.
अरे वाह.
हाँ.
जैसे अगर डायरेक्ट है ही सेज आई एम हैप्पी, तो इनडायरेक्ट होगा ही सेज दैट ही इज हैप्पी.
अच्छा, एम का इज हुआ प्रोनाउन ही के हिसाब से, पर टेंस प्रेजेंट ही रहा.
बिल्कुल, क्योंकि बात अभी भी वर्तमान के संदर्भ में रिपोर्ट की जा रही है.
समझ गया. तो बदलाव तब होगा जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, जैसे ही सेड. उस सूरत में टेंसेस कैसे बदलते हैं, क्या कोई पैटर्न है?
हाँ बिल्कुल, पैटर्न है और ये काफी तार्किक भी है. ऐसा समझे जैसे हम समय में एक कदम पीछे जा रहे हों.
एक कदम पीछे, बैकशिफ्ट.
हाँ, बैकशिफ्ट कहते हैं इसे. तो नियम कुछ इस तरह है. प्रेजेंट सिंपल बन जाता है पास्ट सिंपल. जैसे आई गो का हो जाएगा ही सेड ही वेंट. प्रेजेंट कंटिन्यूअस बन जाता है पास्ट कंटिन्यूअस. जैसे आई एम गोइंग का ही सेड ही वॉज गोइंग. प्रेजेंट परफेक्ट बन जाता है पास्ट परफेक्ट. जैसे आई हैव गॉन का ही सेड ही हैड गॉन.
अच्छा, प्रेजेंट के सारे पास्ट काउंटरपार्ट में चले गए. और पास्ट का क्या?
पास्ट सिंपल भी पास्ट परफेक्ट बन जाता है.
अच्छा,
पास्ट सिंपल भी पास्ट परफेक्ट.
हाँ.
जैसे आई वेंट का भी इनडायरेक्ट में ही सेड ही हैड गॉन ही होगा.
ये इंटरेस्टिंग है.
और पास्ट कंटिन्यूअस बन जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. जैसे आई वॉज गोइंग का ही सेड ही हैड बीन गोइंग.
बाप रे. और मॉडल्स
विल, कैन, मे, उनका भी पास्ट इक्विवेलेंट हो जाता है. विल शैल बदलते हैं वुड शुड में, कैन बदलता है कुड में, और मे बदलता है माइट में. मस्ट अक्सर हैड टू में बदल जाता है.
अरे वाह, मतलब ही सेड आई रोट अ लेटर जो पास्ट सिंपल है, उसका इनडायरेक्ट होगा ही सेड दैट ही हैड रिटन अ लेटर, पास्ट परफेक्ट.
बिल्कुल सही, यही है बैकशिफ्ट. लेकिन याद रखिएगा, ये सब तभी होगा जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो.
ठीक है, ये पक्का याद रहेगा.
हाँ, और एक छोटा सा अपवाद भी है. अगर डायरेक्ट स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ, मतलब सार्वभौमिक सत्य, या कोई आदत बताई गई हो, तो टेंस नहीं बदलता, भले ही रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो.
अच्छा, जैसे?
जैसे द टीचर सेड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. अब ये तो सच है, हमेशा सच रहेगा.
हाँ.
तो इसका इनडायरेक्ट होगा द टीचर सेड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. यहाँ रिवॉल्व्स का रिवॉल्व्ड नहीं हुआ.
ये तो बहुत काम की बात है. अच्छा, टेंसेस के अलावा प्रोनाउंस और वो टाइम प्लेस वाले शब्दों का क्या, उनमें भी बदलाव होते हैं?
जी हाँ, और ये बदलाव भी उसी पर्सपेक्टिव के बदलने की वजह से होते हैं. प्रोनाउंस आई, मी, माय, वी, अस, आ, यू, योर, ये सब इस आधार पर बदलते हैं कि बात कौन कह रहा है, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, और किससे कह रहा है, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब अगर दिया है तो.
अच्छा, जैसे अगर मैं कहूं ही सेड टू मी आई लाइक योर आइडिया, तो यहां आई कौन है और योर कौन?
यहां आई है ही, जिसने कहा, और योर है मी, जिससे कहा. तो इनडायरेक्ट में आई बदलेगा ही में और योर बदलेगा माई में. पूरा वाक्य बनेगा ही टोल्ड मी दैट ही लाइक्ड माय आइडिया.
अच्छा, तो ये देखना होगा कि कौन किससे बात कर रहा है.
हाँ, ये थोड़ा अभ्यास मांगता है, पर लॉजिक साफ है. रिपोर्ट करते समय प्रोनाउन को रिपोर्ट करने वाले के नजरिए से देखना होता है.
और वो समय और जगह वाले शब्द, टुडे टुमारो हियर नाउ इनका क्या होता है?
वो भी बदलते हैं क्योंकि जब हम बात रिपोर्ट कर रहे होते हैं तो अक्सर मूल बातचीत का समय और स्थान बदल चुका होता है। ये बदलाव भी नजरिए को दिखाते हैं।
जैसे
टुडे बन जाता है दैट डे, टुनाइट बन जाता है दैट नाइट, यस्टरडे बन जाता है द प्रीवियस डे या द डे बिफोर, टुमारो बन जाता है द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे, नाउ बन जाता है देन, अगो बन जाता है बिफोर, हियर बन जाता है देयर, दिस बन जाता है दैट, दीज बन जाते हैं दोज।
ओहो, काफी सारे बदलाव हैं। मतलब अगर किसी ने कहा आई एम बिजी नाउ तो बाद में रिपोर्ट करते हुए कहेंगे शी सेड दैट शी वाज बिजी देन।
हाँ,
और वी विल मीट हियर टुमारो का बनेगा दे सेड दैट दे वुड मीट देयर द नेक्स्ट डे।
एकदम सही। ये बदलाव कहानी को कोहियरेंट मतलब सुसंगत बनाते हैं जब उसे किसी और समय और स्थान से बताया जा रहा हो।
ठीक है, ये स्टेटमेंट्स वाले वाक्य तो अब काफी हद तक समझ आ गए। अब आते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस पर, यानी सवालों पर। इन्हें इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना मुझे हमेशा थोड़ा पेचीदा लगता है।
हाँ, सवालों में दो तीन खास बातों का ध्यान रखना होता है। पहली बात तो रिपोर्टिंग वर्ब की है। जैसा हमने पहले कहा, आमतौर पर आज्ड या इंक्वायर्ड का इस्तेमाल होता है।
सेड नहीं।
हाँ, आज्ड। और दूसरी बात कनेक्टर की। आपने बताया था इफ या वेदर लगता है।
हाँ, अगर सवाल ऐसा है जिसका जवाब हाँ या ना में दिया जा सके, मतलब यस नो क्वेश्चन, तो कनेक्टर इफ या वेदर लगता है।
अच्छा,
जैसे ही सेड आर यू कमिंग, इसे बदलेंगे तो होगा ही आस्क्ड इफ या वेदर आई वाज कमिंग।
ठीक है। और अगर सवाल डब्ल्यू एच वाला हो, हु व्हाट वेयर व्हेन व्हाई हाउ,
तब कोई अलग से कनेक्टर नहीं लगता। वो क्वेश्चन वर्ड डब्ल्यू एच वर्ड ही कनेक्टर का काम करता है।
अच्छा, वही शब्द कनेक्टर बन गया।
हाँ, जैसे शी सेड वेयर डू यू लिव, इसका इनडायरेक्ट बनेगा शी आस्क्ड वेयर आई लिव्ड। इन उदाहरणों में एक और बड़ा बदलाव दिख रहा है मुझे। वाक्य का स्ट्रक्चर सवाल जैसा नहीं रहा। आर यू कमिंग में वर्ब पहले था आर, सब्जेक्ट यू से पहले, पर इफ आई वॉज कमिंग में सब्जेक्ट आई पहले आ गया, फिर वर्ब वॉज।
हाँ,
वैसे ही वेयर डू यू लिव में हेल्पिंग वर्ब डू था, पर वेयर आई लिव्ड में वो नहीं है, और सब्जेक्ट आए पहले है, वर्ब लिव्ड बाद में।
बिल्कुल सही पकड़ा। ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को बदलने का सबसे महत्वपूर्ण नियम है। इनडायरेक्ट स्पीच में सवाल को स्टेटमेंट फॉर्म में बदल दिया जाता है, मतलब सामान्य वाक्य की तरह।
स्टेटमेंट फॉर्म।
हाँ, इसका मतलब है एक, सब्जेक्ट वर्ब से पहले आता है। दो, हेल्पिंग वर्ब्स जैसे डू, डज, डिड, जो सिर्फ सवाल बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो हट जाते हैं। हाँ, टेंस का बदलाव जरूरत के हिसाब से मेन वर्ब में हो जाता है। तीन, और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क की जगह फुल स्टॉप लगता है।
ये थोड़ा अजीब सा लगता है पहली बार में। मतलब सवाल को सवाल की तरह क्यों नहीं रखते?
क्योंकि अब हम सीधे सवाल पूछ नहीं रहे।
अच्छा,
हम तो बस ये बता रहे हैं कि किसी ने क्या सवाल पूछा था। है ना, इसलिए वाक्य की बनावट एक सूचना देने वाले वाक्य मतलब स्टेटमेंट जैसी हो जाती है, न कि सवाल पूछने वाले वाक्य जैसी। ही आस्क्ड ये बात कि मैं आ रहा था या नहीं, शी आस्क्ड ये बात कि मैं कहाँ रहता था।
अच्छा, हाँ हाँ, अब समझाया लॉजिक इसके पीछे का। हम रिपोर्ट कर रहे हैं, पूछ नहीं रहे। ठीक है, अब आखिरी पढ़ाओ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, यानी वो वाक्य जिनमें कोई आदेश, ऑर्डर, अनुरोध, रिक्वेस्ट, सलाह, एडवाइस या मनाही, प्रोहिबिशन हो। इन्हें कैसे बदलते हैं?
इम्पेरेटिव वाक्यों का बदलना तुलनात्मक रूप से सीधा है। सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को वाक्य के भाव के अनुसार चुनते हैं, जैसे टोल्ड, ऑर्डर्ड, कमांडेड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, वॉर्न्ड, फॉरबेड, सजेस्टेड वगैरह।
भाव के अनुसार,
ठीक है।
और वाक्य को जोड़ने के लिए दैट या इफ तो नहीं लगेगा यहाँ?
नहीं, यहाँ नहीं। यहाँ कनेक्टर के रूप में इन्फिनिटिव टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म का प्रयोग होता है।
तो प्लस वर्ब।
हाँ, पॉजिटिव वाक्यों के लिए टू प्लस वर्ब लगता है। जैसे द कैप्टन सेड अटैक बनेगा द कैप्टन कमांडेड टू अटैक, या मदर सेड फिनिश योर मिल्क बनेगा मदर टोल्ड मी टू फिनिश माई मिल्क।
और अगर वाक्य नेगेटिव हो, जैसे डोंट मेक नॉइज।
नेगेटिव इम्पेरेटिव्स के लिए नॉट टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म लगाते हैं।
अच्छा, नॉट टू।
हाँ, जैसे द टीचर सेड डोंट टॉक बनेगा द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स नॉट टू टॉक।
ठीक है, और अगर प्लीज लगा हो जैसे प्लीज वेट हियर,
तब रिपोर्टिंग वर्ब रिक्वेस्टेड सबसे अच्छा रहता है और प्लीज हट जाता है क्योंकि अनुरोध का भाव रिक्वेस्टेड में ही आ गया।
हाँ, वो तो वर्ब में आ गया
जी, तो वाक्य बनेगा ही रिक्वेस्टेड मी टू वेट देयर।
देयर, ओ हाँ, हियर का देयर भी हो गया।
बिल्कुल, वो टाइम प्लेस वाला नियम यहाँ भी लागू होगा।
सही,
तो यहाँ भी रिपोर्टिंग वर्ब का सही चुनाव बहुत मायने रखता है। ही टोल्ड मी टू लीव और ही ऑर्डर्ड मी टू लीव में फर्क है ना?
हाँ बिल्कुल है।
सही वर्ब मूल वक्ता के लहजे और अधिकार को दर्शाता है।
कमाल है। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना एक तरह से पूरी बातचीत को नए सिरे से गढ़ने जैसा है, जिसमें टेंस, प्रोनाउन, शब्द और वाक्य की बनावट सब कुछ बोलने वाले के नजरिए से ढल जाता है।
हाँ, कह सकते हैं।
चलिए एक बार फटाफट मुख्य बातें दोहरा लेते हैं जो हमने इस चैप्टर से सीखी।
जरूर, तो संक्षेप में देखें तो एक, डायरेक्ट स्पीच, वक्ता के असल शब्द कोटेशन मार्क्स के अंदर।
ज्यों का त्यों।
दो, इनडायरेक्ट स्पीच, वक्ता की बात को रिपोर्ट करना बिना कोट्स के अपने शब्दों में जिसमें जरूरी बदलाव किए जाते हैं।
रिपोर्टेड स्पीच।
तीन, रिपोर्टिंग वर्ब, बताता है कि बात कैसे कही गई, सेड, टोल्ड, आस्क्ड, ऑर्डर्ड वगैरह। और इसका टेंस बहुत महत्वपूर्ण है, याद है ना?
हाँ, पास्ट टेंस में हो तभी ज्यादातर बदलाव होते हैं।
फोर, कनेक्टर्स, वाक्यों को जोड़ते हैं, दैट, इफ, वेदर, क्वेश्चन वर्ड्स, टू,
वाक्य के टाइप पर निर्भर करता है।
फाइव, बदलाव, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो टेंसेस पीछे जाते हैं, प्रेजेंट से पास्ट, पास्ट से पास्ट परफेक्ट। बैकशिफ्ट, प्रोनाउंस रिपोर्ट करने वाले के नजरिए से बदलते हैं, टाइम प्लेस वर्ड्स बदलते हैं, नाउ का देन, हियर का देयर, टुडे का दैट डे।
ठीक।
सिक्स, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, सवाल, रिपोर्टिंग वर्ब आस्क्ड, कनेक्टर इफ, वेदर या क्वेश्चन वर्ड। और सबसे जरूरी, वाक्य स्टेटमेंट फॉर्म में बदल जाता है, क्वेश्चन मार्क हट जाता है।
हाँ, स्टेटमेंट फॉर्म।
सेवन, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, आदेश, अनुरोध, रिपोर्टिंग वर्ब भाव के अनुसार ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइस्ड, और वाक्य टू प्लस वर्ब या नॉट टू प्लस वर्ब से जुड़ता है।
बहुत अच्छे से ये सब कुछ कवर हो गया। तो ये था चैप्टर 11, द वॉइस ऑफ स्पीच का सार। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना सिर्फ ग्रामर का नियम नहीं लगता मुझे, बल्कि ये समझने का तरीका है कि हम सूचना और बातचीत को कैसे प्रोसेस और शेयर करते हैं।
बिल्कुल,
इन नियमों को जानने से ना सिर्फ लिखने बोलने में शुद्धता आती है, बल्कि हम दूसरों की कही बातों को ज्यादा ध्यान से समझने लगते हैं।
और जाते जाते एक सवाल मेरे मन में उठता है, जब हम किसी की बात को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो क्या हम सिर्फ शब्दों को बदल रहे होते हैं, या अनजाने में उसके मायने या उसके पीछे के भाव को भी थोड़ा बदल देते हैं? क्या रिपोर्टिंग हमेशा पूरी तरह न्यूट्रल, मतलब निष्पक्ष हो सकती है?
ये सोचने वाली बात है। शब्दों का चुनाव, टेंस का बदलाव, क्या ये सब मिलकर मूल बात के वजन को, उसके इम्पैक्ट को कम या ज्यादा कर सकते हैं?
शायद हाँ, शायद नहीं। डायरेक्ट स्पीच ज्यादा ऑथेंटिक, मतलब प्रामाणिक लग सकता है, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच ज्यादा संक्षिप्त और फ्लुएंट, मतलब प्रभावपूर्ण हो सकता है। किस स्थिति में कौन सा बेहतर है, और रिपोर्ट करते समय हम मूल अर्थ के प्रति कितने ईमानदार रह पाते हैं, ये भाषा के इस्तेमाल का एक दिलचस्प पहलू है। इस पर गौर कीजिएगा कभी कि आप कब डायरेक्ट चुनते हैं और कब इनडायरेक्ट और क्यों।